पंचाध्यायी लेक्चर नंबर एक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पञ्चाध्यायावयवम् मम कर्तृगन्तराज आत्मवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तम् स्तुवे महावीरम् शेषानपि तीर्थकरा अनन्तसिद्धानहम् नमामि समम् धर्माचार्याध्यापक साधु विशिष्टान् मुनीश्वरान् वन्दे जीया जैनम् शासनम् अनादिनिधनम् सुवन्द्यमनवद्यम् यदपि च कुमतारातिन दयम् धूमध्वजोपमम् दहति। यह ग्रंथराज श्री पंचाध्यायी है और आज से उसका हम स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो ग्रंथराज पंचाध्यायी है उसके अनुमानित रचयिता है श्री अमृत चंद्राचार्य। उसके अध्यात्म चंद्रिका टीका लिखी है अध्यात्म पुरुष स्वर्गीय पंडित श्री सरनाराम जी जैन सहारनपुर वालों ने और इसका संयोजक है महावीर प्रसाद जैन। अलवर से ये छपी है। इसमें जरा प्रस्तावना देख लेते हैं हम यहाँ पर। अभी जो निकाले ना उसके दो पेजेस पहले निकालना। यानी इसके ग्रंथकार के बदले बारे में दो मत है। एक तो ये अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है ऐसा भी एक मत है और राजमल को है ये दूसरा राजमल प्राण जो अभी हम कलश टीका पढ़ रहे हैं उसके जो करता है उन्होंने इसको लिखा ये दूसरा मत है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्रस्तावना को। कविवर राजमल कृत पंचाध्यायी जैन दर्शन का महत्वपूर्ण एवं अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। इस ग्रंथ की उपयोगिता इसी से स्पष्ट है। इसको विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं समाज के विभिन्न परीक्षालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान दिया गया। ग्रंथ के स्वरूप और ग्रंथकार के विषय में प्रस्तुत संस्करण के पूर्व प्रकाशित पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री द्वारा की गई सुबोधिनी टीका जो इंदौर से वीर निर्वाण संवत 2444 में प्रकाशित हुई उसमें प्रकाश डाला गया है। इसके बाद पंडित देवकी नंदन सिद्धांत शास्त्री इनका नाम सुना है गोपाल दास जी बरैया के शिष्य और इन्होंने भी बहुत प्रचार प्रसार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है उनके द्वारा लिखी गई हिंदी टीका जो श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन शोध संस्थान वाराणसी से वीर निर्वाण संवत 2512 में प्रकाशित हुई उसमें पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने काफी विद्वत्तापूर्ण एवं महत्वपूर्ण प्रस्तावना लिखी है जिसमें उन्होंने ग्रंथ एवं ग्रंथकार के संबंध में ऊहापोह करके काफी विवेचना की है। ग्रंथकार ने 5 अध्याय में पूर्ण करने के उद्देश्य से ही ग्रंथ का नाम पंचाध्यायी रखा। जैसा कि पंचाध्याया वयवयम मम कर्तृ ग्रंथ राजम आत्मवशात अभी हमने जो पहला श्लोक पढ़ा था ना उसकी लाइन है इत्यादि श्लोक के पूर्वार्ध से ज्ञात होता है कि ग्रंथकार को यह ग्रंथ 5 अध्याय में लिखना अभीष्ट था किंतु वे किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पूरा नहीं कर सके ग्रंथ के विषय से ही स्पष्ट है कि वे ग्रंथ के डेढ़ अध्याय ही लिख सके। इस ग्रंथ के रचनाकार के बारे में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलने के कारण कई वर्षों तक इस ग्रंथ के रचयिता के रूप में आचार्य अमृतचंद स्वीकार किए गए, परंतु स्वर्गीय पंडित जुगल किशोर मुख्तार के अथक परिश्रम एवं तर्कसंगत प्रयासों के आधार पर इस ग्रंथ के रचयिता पंडित राजमल जी विद्वत जगत में स्वीकार किए गए, अतः इस विषय में लिखकर पुनरावृत्ति करना उचित नहीं समझता। इस ग्रंथादिराज पर तीन प्रसिद्ध विद्वानों ने टीका लिखी है। प्रथम टीकाकार के रूप में पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री जी ने सर्वप्रथम टीका लिखकर विषय को स्पष्ट किया है। टीका अन्वयार्थक नहीं है, भावार्थक है। उस भावार्थ में पंडित जी ने कई स्थानों पर अपना मंतव्य प्रकट किया है जो पाठक को हृदयग्राही है। पंडित देवकी नंदन शास्त्री दूसरे टीकाकार है, जिन्होंने विषय को काफी स्पष्ट किया है, विशेषार्थ में कई विषयों पर अपने मंतव्य भी प्रकट किए हैं, जिसका स्पष्ट खुलासा पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने अपनी प्रस्तावना में किया है। जैसे स्त्री पुरुष नपुंसक वेद की चर्चा, व्यवहार निश्चय व्यवहार की चर्चा विषयों पर विशद विवेचन है। तीसरे टीकाकार के रूप में जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, टीका जो पढ़ेंगे, पंडित सरनाराम जैन का नाम आता है, जो अभी तक विद्वत जगत में प्रसिद्ध नहीं है। उसका कारण है कि वे परंपरागत विद्वान नहीं है, अपितु स्वाध्याय के आधार पर जो उन्होंने अनुभव किया और आगम में अध्ययन किया उसके आधार पर अध्यात्म चंद्रिका टीका विस्तार से लिखी है। पूर्व में लिखी गई दो टीकाओं से यह टीका बहुत विस्तृत एवं अत्यंत उपयोगी है। इस टीका की विशेषता है कि पंडित जी ने सैद्धांतिक शब्दों को अपनी भाषा में सीधी सरल सुबोध शैली में पाठकों के सामने विषय को प्रस्तुत किया है। कुछ विषयों को तो इतना स्पष्ट कर दिया है कि पाठक को द्रव्य गुण पर्याय जैसी कठिन चर्चा बिल्कुल सरल प्रतीत होने लगेगी, जैसे द्रव्य के निरूपण में द्रव्य के पर्यायवाची शब्दों को देकर के पाठकों की इस भ्रांति को निर्मूल कर दिया है। अन्वय अर्थ धर्मी जैसे शब्दों के अर्थ भी द्रव्य ही है। टीकाकार को विस्तृत ज्ञान था, यही कारण है द्रव्य के जितने पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं वे सभी खोज करके एक स्थान पर रख दिए। पहले हमारा ये अद्योपान स्वाध्याय हुआ है तभी हमने ये सभी याद किए थे ना, द्रव्य के पर्यायवाची, पर्याय के, गुण के, हाँ वो नहीं, वो तो श्लोक है 8 नंबर का, उसकी बात नहीं है। द्रव्य के जो पर्यायवाची नाम, जो तत्व है, द्रव्य है, अर्थ है, अन्वय है, वो सब। हाँ, अभी प्रस्तावना को पढ़े हैं हम, अभी जहाँ हमने मंगलाचरण गाया उसके पहले एक फोटो है और फोटो के पहले वाला पृष्ठ मिला। प्रस्तावना जो है, कोई बात नहीं, सुनना आप, एक पेज है केवल।
एक नंबर 17,
टीकाकार को विस्तृत ज्ञान था, ये हो गया। इसी प्रकार गुण पर्याय के भी पर्यायवाची एवं उनकी स्पष्ट विवेचना काफी प्रभावी ढंग से की गई है। टीकाकार द्वारा लिखित भावार्थ और उस भावार्थ में दिए गए कोष्टक में दिए गए विशेषार्थ पाठकों को अत्यंत उपयोगी है। प्रत्येक अधिकार एवं अवांतर अधिकार, देखो अधिकार और अवांतर, अवांतर ने उसका भेद, अधिकार का भेद, के पश्चात दिए गए भावार्थ एवं प्रश्नोत्तरों ने तो ग्रंथ को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। विषय की विवेचना के पूर्व कठिन शब्दों का खुलासा इस टीका की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसे चेतना शब्द के पर्यायवाची शब्द देकर उनके अर्थों को स्पष्ट करना अपने आप में टीकाकार की विद्वत्ता की छाप स्पष्ट झलकती है। टीकाकार ने कई विषयों पर अपने मंतव्य दिए हैं, जो अनुभव एवं आगम के आधार पर दिए हैं, परंतु विचारणीय है जैसे अष्टमूल गुणों की विवेचना में टीकाकार लिखते हैं, व्यवहार गृहस्थ धर्म के पालने में भी बहुत विवेक की आवश्यकता है। ये जो व्यवहार धर्म है गृहस्थ का, उसमें भी विवेक की आवश्यकता है। आगम पद्धति कुछ और है और समाज का ढर्रा कुछ और है, यानी जो रूढ़ियां चलती है वो कुछ अन्य है। समाज रूढ़ी बहुत गलत है। इस विषय में श्री रत्नकरण जैसे शाकाचार का भी व्यवहार ज्ञान लोगों को नहीं है और जैसे तैसे देखा देखी विचरते हैं। इस पर भी कुछ प्रकाश डालना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। वह इस प्रकार है, सर्व पद्धति तो यह है कि पहले तीन मकार और पांच पापों को मोटे रूप में त्याग किया जाए। सप्तव्यसन और उदंबर फल का त्याग इसी पाप त्याग के पेट में आ जाता है। देखिए श्री रत्नकरण शाकाचार सूत्र नंबर 66। ये गृहस्थों का मूल धर्म है, इसके बिना श्रावक नहीं होता। रात्रि भोजन त्याग, शुद्ध भोजन ग्रहण, भोगोपभोग का कम करना इत्यादि सब इसके बाद है। जैसा कि क्रम श्री रत्नकरण शाकाचार में दिया है, लोग सात व्यसन तो सहते रहते हैं, यानी वो व्यसन होते हैं, उनके व्यसन को सेना है, वो व्यसनाधीन है, और रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं। परस्त्री गमन तो करते रहते हैं और खाते शुद्ध भोजन है। जुआ सट्टा बदनी तो करते हैं और प्रातः शाम सामायिक में बैठ जाते हैं। बदनी मुझे भी मालूम नहीं है, शायद कोई जुए का टाइप हो, जैसे यहाँ कोई मटका बिटका चलता वैसे कुछ होगा।
नीता
दीदा इन्हें उनके जमाने में और कोई पद्धति होगी, मगर है तो ये जुए का ही प्रकार। भाव तो दूसरों के ठगने का करते हैं और स्वाध्याय में शास्त्र के पोथे पड़ जाते हैं। बाहर में तो गर्म वस्त्र का त्याग कर देते हैं, अंदर में मिथ्यात्व माया निदान की पोट है। बाहर में पूजा करते हैं, अंदर में रात्रि भर ताश खेलते हैं। पांचों पाप भी करते रहते हैं और बाहर में सबसे अधिक धर्मात्मा भी बने रहते हैं। बाहर में तो सम्यक के आठ अंग पालते हैं, पढ़ते हैं, अंदर में धर्मात्माओं को ठगने से भी नहीं चूकते। इन्हें अन्य की बात क्या, धर्मात्मा है आपस में उनको भी ठगते। ऐसे लोग भले ही अपने को धर्मात्मा समझे, किंतु वे जैन धर्म सुनने के पात्र भी नहीं है, नाम जैन भी नहीं है, इन्हें नामधारी जैन भी नहीं है। और हाय व्यवहार धर्म नष्ट हो जाएगा, इसकी दुहाई देते हैं। कहने का आशय थोड़े में इतना ही है, ऐसे क्रमभंग त्याग की जैन पद्धति नहीं है। क्रमभंग करना इन्हें, हम किस भूमिका में है वहाँ पहले पालने योग्य क्या बातें हैं उसको तो नहीं पालते हैं और आगे का कुछ व्रत अंगीकार कर देते। यानी अभी तो मिथ्यात्व के बारे में तो कुछ विचार है ही नहीं, अन्य पाप भी चलते और जाके सामायिक में बैठ जाएंगे तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं, बस हाँ बैठ गया घंटे भर के लिए, बस यही बात होगी कि ऊपर हमने पढ़ा ना। न उसमें कुछ धर्म है, उपर्युक्त कड़े शब्दों में जरूर लिखा है, यानी इसके अंदर क्या क्या लिखा है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं, किंतु सत्य है या झूठ यह अपने अनुभव से मिलाकर देखें। हमने भी बहुत अनुभव पूर्वक लिखा है, ये सब इनटू इन्वर्टेड है, ग्रंथ में से कोटिंग किया, कोट किया है उसको। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि टीकाकार ने एक स्थान पर नहीं अनेक स्थानों पर अपने मंतव्य दिए, जो उनकी निर्भीकता एवं विद्वत्ता का स्पष्ट प्रमाण है। मैं कई विषयों पर विस्तार से लिखना चाहता था, परंतु प्रशासनिक दायित्व के कारण चाहते हुए भी नहीं लिख सका। मुझे आशा है कि इसका दूसरा संस्करण शीघ्र प्रकाशित होगा, उसमें मैं विस्तार से लिख सकूंगा। ये 96 में प्रकाशित है। इसके बाद हमने बहुत सारे करीबन 600 जितने सुझाव उनको लिख के भेजे थे। मैंने खुद देवकी नंदन की टीका और इस टीका को एक एक श्लोक को मिलाया, एक एक अक्षर को मिलाया और जहां कुछ त्रुटियां थी उसको सुधारा है। और भी जो प्रूफ रीडिंग के दृष्टि से भी जो जहां कुछ करेक्शन नजर में आई उसको भी ये सब लिख के उनको भेजा था। उनका पत्र भी आया था कि हम दूसरे एडिशन में इसको जरूर सुधारेंगे। पता नहीं उन्होंने दूसरा संस्करण निकाला कि नहीं निकाला, ये पता नहीं है। अब जहां जहां मैंने स्वयं सुधारा है उसको हम क्रम से बताएंगे। इसके लिए रोज आना पड़ेगा। तो पुस्तक दे दो हम सुधार लेंगे, वो बात नहीं चलेगी किसी से भी। हाँ, आपको रोज आना ही क्या है इसलिए बता रहे हैं। आपको लगे ये कड़क बोल रहे हो?
ये पुस्तक के अंदर ही काफी कड़क बातें हैं, पहले उन्होंने बोला है। और ये कड़क बातें हैं और ये पुस्तक मैंने पहले ली थी,
यहाँ हुई है
अपनी। अभी कड़क नहीं होने के लिए उसको दिया तो वो भी मैं क्या
आपको
देखती
अभी आगे कुछ बात नहीं है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी जहाँ अभी हमने मंगलाचरण देखा था,
विषयों को विस्तार से लिखना चाहता
हूँ। डॉक्टर शीतल चंद्र, ये जो प्रस्तावना लिखने वाले हैं ना, डॉक्टर शीतल चंद्र प्राचार्य दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज जयपुर,
उनका ऐसा कहना है कि वो बहुत कुछ
यानी प्रस्तावना में और लिखना चाहते थे,
लेकिन प्रकाशन करने की उनको भाई होगी तो प्रॉब्लम होंगी
या इनकी जवाबदारी
होगा
प्रशासकीय। नहीं, इनको इतना टाइम नहीं था लिखने, प्रकाशकीय प्रशासनिक ने उनके कॉलेज के कुछ अधिग्रस्त थे इसलिए वो लिख नहीं सके। चलो यहाँ हम शुरू करते हैं। एक नंबर का पृष्ठ, यहाँ से पुस्तक शुरू हो जाती है। ग्रंथराज श्री पंचाध्यायी प्रथम खंड प्रथम पुस्तक है, अध्यात्म चंद्रिका टीका सहित। ये जो सरनारायण जी ने टीका लिखी उस टीका का नाम है अध्यात्म चंद्रिका। और एक नंबर का जो अध्याय है यहाँ पर वस्तु निरूपण श्लोक 260 तक, यानी एक नंबर से लेकर 260 श्लोक तक ये पहला वस्तु निरूपण नामक अध्याय चलेगा। मंगलाचरण अभी एक नंबर का हमने देखा था, फिर से उसको देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। पंचाध्यायावयवम मम कर्तृग्रंथ राजमात्मवशात् अर्थालोक निदानम यस्य वचस्तम स्तुवे महावीरम। इसका अर्थ देखते हैं। पांच जिसके अवयव है, पंचाध्यायावयवम पांच अध्याय जिसके अवयव है, अर्थात जो पांच अध्यायों में बटा हुआ है, यानी पांच अध्याय लिखना चाहते थे। ऐसे ग्रंथराज को अपने क्षोभम शक्ति अनुसार बनाने वाले मुझे, जिसके वचन पदार्थों के प्रतिभास होने में कारण हुए, वो श्री महावीर भगवान को मैं स्तवन करता हूँ। यानी मैं ये ग्रंथ को लिख रहा हूँ और मेरे क्षोभम शक्ति के अनुसार मैं बनाऊंगा, परंतु उसमें निमित्त कौन है कि ये ज्ञान किसके कारण हुआ, किनके वचनों से? तो महावीर भगवान के वचनों से। यानी ये जो आगम कहो, जो ग्रंथ जो कहे, जो सर्वज्ञ की परंपरा से चला आया वही प्रमाण है। जो कहते नहीं मैंने अपने बुद्धि से इसकी रचना की है, मुझे कोई दूसरा था नहीं बताने वाला या निमित्त रूप, जो सर्वज्ञ की परंपरा से चला आया है, तो उसकी बात सत्य नहीं हो सकती। भावार्थ, जिस प्रकार चक्षुष्मान भी व्यक्ति, चक्षुष्मान का अर्थ समझते हैं? हाँ, जो अंधा नहीं है, जो देख सकता है, चक्षुष्मान, चक्षु सहित। आयुष्मान कहते हैं वैसे चक्षुष्मान, वह भी व्यक्ति प्रकाश के बिना पदार्थों को नहीं देख सकता। आप देख सकते हैं प्रकाश बिना किसी चीज को? अंधेरे को नहीं देखते?
अंधेरे में आत्मा को नहीं
देखते? वो दिखाई नहीं देगा चक्षु से। हाँ, उसी प्रकार यद्यपि सब जीवादिक पदार्थ, ये जीवादिक पदार्थ में किस किस को लेना रूमा? जीवादिक पदार्थ है, जीवादिक जो छह द्रव्य है, कैसे वो अनादि निधन, क्या कहा? यद्यपि सभी जो जीवादिक पदार्थ है अनादि निधन, यानी अनादि अनिधन, जिसको आदि नहीं है, शुरुआत बिगिनिंग नहीं है, जिसको कोई अंत नहीं है, एंड नहीं है, तो कब से है? अनादि से। तो अनादि काल पहले कैसे बने? वो है, बने नहीं, बने कहने से कहीं ना कहीं बिगिनिंग हो जाती है। वो है बस है, त्रिकाल है कहेंगे उसको। तो अनादि निधन, और कैसे स्वयं सिद्ध कहा? स्वतः सिद्ध, स्वयं भू नहीं कहा, जो स्वयं निर्मित है उसको स्वयं भू कहते हैं। मुझे निर्मित की बात ही नहीं है, वो निर्मिति की बात तो पर्याय में होती है, तो द्रव्य की बात चल रही है, वस्तु की बात हो रही है। तो स्वतः सिद्ध है, तथापि पहले तो ये नक्की किया कि वस्तु कैसी है सभी, तो अनादि निधन है, स्वतः सिद्ध है। तथापि उनका यथार्थ स्वरूप, जैसा है वैसा स्वरूप, यानी रियलिटी, मोहांधकार से अंधे हुए, जैसे चक्षुष्मान व्यक्ति प्रकाश के बिना वस्तुओं को नहीं देखता, वैसे मोहांधकार, मोहरूपी अंधकार, मिथ्यात् रूपी अंधकार से जो अंधे हैं, ऐसे अज्ञ यानी अज्ञानी पुरुषों को जिनोपदेश के बिना समझ में नहीं आ सकता, यानी उनका सही स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, क्योंकि पदार्थ अनादि से अनंत काल तक जैसे अपने स्वरूप सहित ही विद्यमान है, उन पदार्थों के स्वरूप में उसकी जो कुछ क्वालिटी है, उनकी जो कोई बात है, जो व्यवस्था है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो जैसे है वैसे विद्यमान है और रहेंगे। अज्ञानी जीव को उसके बारे में पता नहीं। और कहते हैं कि जिनोपदेश के बिना, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश जो डायरेक्ट उनके मुख से कहो या परंपरा से हमें आचार्यों के द्वारा मिला हो, उसके बिना एक कंडीशन है, समझ में नहीं आ सकता। किसी को ऐसे अपने आप समझ में आ जावे मिथ्या दृष्टि को, तो ये बात नहीं हो सकती। देशना बिल्कुल, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्व में देशना की आवश्यकता है। केवल सम्यक्त्व में है ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कोई वो तो क्षोभम सम्यक्त्व भी है, जिसको ऑलरेडी होके छूट गया है, उसको बाह्य निमित्त से वो फिर विचारों में चढ़ जाता है, अंतरंग वृत्ति हो जाती है, उसको सम्यक्त हो सकता है। वहां देशना, ये पांच लब्धि की कंडीशन वहां नहीं है, वहां पर भी उसके वो तो तत्व का विचार तो वहां पर भी चलेगा। तो जिनोपदेश के बिना समझ में नहीं आ सकता, इसलिए ग्रंथकार का कहना है मुझे वस्तु स्वरूप के परिज्ञान, परिज्ञान ने वो उसका परिपूर्ण ज्ञान कहो, उस संबंधी जो ज्ञान है वस्तु स्वरूप का, उस होने में भगवान श्री महावीर स्वामी के दिव्य वचन ही साक्षात कारण हुए। वे ग्रंथकार तो महावीर भगवान के समय में तो थे ही नहीं, पर उनके वचन चले आए हैं, वो वचनों को यहाँ कारण बताया, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। देखो ये अभी जो वर्तमान में के कोई भी ज्ञानी हो, तो उनके लिए कौन से तीर्थंकरों का निमित्त कहेंगे हम? महावीर भगवान, क्योंकि महावीर भगवान का कौन सा काल चला है? शासन काल। एक होता है तीर्थ काल और एक होता है शासन काल, उसमें क्या अंतर है? हाँ, जो तीर्थंकर का जो उपदेश चलता है, समोषण जितने साल तक चलता है, उसको कहेंगे उनका तीर्थ काल। तीर्थ है ना उपदेश, तो उनका उपदेश का काल। और बाद में दूसरे तीर्थंकर जब तक नहीं होते, तो ये उस तीर्थंकर का शासन काल कहलाता है। अभी महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। इसलिए कितना होगा ऐसा पूछ रहे, हाँ कितने साल तक,
कितना टाइम जाएगा ये पूछ रहे,
जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे वहाँ धर्म का लोप हो जाएगा, वो बात सही है, वहाँ कोई नहीं रहने पर उनका शासनकाल कह सकते हैं।
क्योंकि हमने क्या देखा, एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर जब तक नहीं होते इनका जो कुछ काल होगा वो शासनकाल कहेंगे। और भगवान महावीर का तीर्थ काल कितना रहा प्रेरणा में,
कितने साल तक तीसवे साल में दीक्षा ली, 42वें साल में केवल ज्ञान हुआ और 72 साल में निर्वाण, 30 साल तक।
मेरा ये कहना है कि द्रव्यनियोग समझने के लिए पद्मलोक की आवश्यकता है, क्योंकि 12 साल से तो टपने रहे और 30 साल समाचरण चला, बार बोल भाग इंग्लिश में पढ़
तो इसलिए यहाँ भगवान महावीर को नमस्कार किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इससे ग्रंथकार ने देशना लब्धि का संकेत भी कर दिया है। ये देशना लब्धि क्या है, कौन से गुण की पर्याय रही है, देशना लब्धि किसकी होती है, यानी वो क्या है, देशना लब्धि क्या है,
हाँ
वाणी है देशना लब्धि, आप क्या कहते हैं देशना लब्धि क्या है, अपने कहना चाहिए, आप कुछ कहेंगे, हाँ पांच लब्धियों में वो कौन से गुण की पर्याय है, किसी गुण की पर्याय नहीं, आप क्या कहते हैं, कौन कहना चाहते, सुशील है ये तैयार है,
लक्ष्मी गुण कह रहे,
हाँ बोलो ज्ञान गुण, देखो देशना तो उपदेश को कहते हैं, देशना लब्धि किसको हुई, लब्धि ने प्राप्ति किसको मिली, सुनने वाले को सुना, इसलिए उसको देशना लब्धि कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, किसी ने कन्नड़ में यहाँ उपदेश दिया आपको भाषा ही नहीं समझ में आई, तो आपको देशना मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली, तो केवल सुनना नहीं है, सुनना तो पहली कंडीशन है, ज्ञानी ज्ञानी से साक्षात सुनना, इसको देशना देशना ज्ञानी की होती है, मैं समझ रही थी, वो बोले चौथे गुणस्थान वाला, पांचवे वाला, छठे सातवा वाला हो, भगवान हो, गंधर्व हो, साक्षात ज्ञानी की उपस्थिति में उसके मुख से उन्होंने सुना, ये हुआ सुनना श्रवण, दूसरी बात ग्रहण यानी समझना तो चाहिए, समझा ही नहीं तो उसके सुनना नहीं सुनना बेकार है, तो ये ग्रहण श्रवण है, ग्रहण है, धारण यानी याद में रखना, क्योंकि जो सुना है वो थोड़ा याद रखे तो उस पर विचार चलेगा, क्योंकि जो सुना है समझा है वो ऐसा ही है, वो उसे आपके अपनी बुद्धि से निर्णय करने की बात आगे आती है, तो श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण, निर्धार किया, निर्धार किया तो वैसा परिणाम होगा उसका, प्रतीति में तब जाके आगे उसकी बात चलेगी, तब तो विचार चलेगा, ये ऐसे ही पहले नक्की किया है तो वो धारा चलेगी, वो तत्व विचार चलेगा, जैसे पहले उसने देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझा, पहले तो उसको मालूम नहीं था, तो खुदेव उनकी भी वो शरण लेता था या उसके भी फॉलो करता था उसको, तो उसने निर्धार किया ये ऐसा ही है देव का स्वरूप गुरु का स्वरूप, तो अभी उसमें परिणमन होगा कि नहीं होगा, क्या परिणमन होगा, दुनिया के सबको रुगु उनको सुधारते बैठेगा ना, उसकी श्रद्धा सही हो जाएगी और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के विनय आदर सब छूट जाएगा, उनके प्रति जो उनका कुछ जाना था वो उसका समागम करता तो वो सब बंद हो जाएगा, नहीं तो वो भी चलता रहे, नहीं नहीं हमारी तो श्रद्धा होगी तो उसमें कुछ सही बात है ही नहीं, तो ये परिणमन्य बात है और ये सब ज्ञान गुण में चलती है धारा। तो ये है देशना लब्धि, ये लब्धि जीव को हुई ना तो उसके अपने गुण की पर्याय, और देशना तो उपदेश को कहेंगे, वो तो उनके वचन है। तो कहते इससे
ये पूछना है कि हम आपने देशना कितनी बार सुने हैं? सुशीला बार, आनंद बार, तो ऐसा में तो हो गया सुनी जब कहेंगे जब आपका पंजाब, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सिर्फ वो ट्विस्ट करने के लिए मैंने बोला, क्योंकि हम अभी तक अनंत बार तो समोसरण में होके आए हैं, लेकिन आपने बोला ना जब कोरो रही थी
वो
सब याद है।
देखो ये पढ़ेंगे
जब हम उस रूप परिणवन के, अभी आपने क्या बताया परिणवन जो लास्ट थे, जब हमने देशना लब्धि सुनी, मतलब देशना सुनी और लब्धि रूप परिणवन मिल गई, तब उसको सच्चा सुनना चाहिए।
ये हम उदाहरण हमेशा देते हैं ना, बच्चे कोई हमारे घर मेहमान आए और हमारा बच्चा वहाँ खड़ा था 8 साल का, हमने कहा जा बेटा पानी ले आ, तो उसने वो खड़ा रहा वैसा ही, फिर और एक बार माँ ने कहा कि जा बेटा पानी ले आ, वो भी बच्चा वैसा ही करे तो माँ को गुस्सा तो आने वाला है ना, क्योंकि मेहमानों के सामने इज्जत का सवाल है, तो क्या सुनता नहीं? क्या सुना ना माँ आपने 3 बार कहा पहले ऐसा बताया फिर दोबारा ऐसा बताया, अभी थोड़ा जोर से बताया गुस्सा करके बताया, मैंने तो सुना, तो उसने सुना कि नहीं सुना? वो परिणाम नहीं हुआ ना, वो कहाँ सुनना हुआ उसका?
बच्चे का नाम क्या?
कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म लब्धि तक नहीं पहुंचता है, जीव को देशना लब्धि भी प्राप्त कर लेता है, कायद लब्धि भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन कर्म लब्धि तक नहीं होता, इसलिए उसे समय नहीं होता।
वो बात अलग है, ये परिणमन अभी ये तो उस समय तत्व की बात।
आप ऐसा कह रहे हैं जैसे आजकल के यहाँ दिखाते हैं पुलिस क्या चल रहा है, उस केस का क्या हो रहा है, खुद चले सर खुद चले, कोई नहीं चले, आई वॉन्ट रिजल्ट, जैसे यहाँ करंट लब्धि पहुंचा तो रिजल्ट मिला, घर में जब तक तो खुद चल रही है कोई रिजल्ट नहीं मिला।
मैंने वो परिणमन यानी सम्य दर्शन रूप परिणमन को नहीं लेना यहाँ पर, वो तत्व को उसने सही पकड़ा है, वो तो चलेगा आगे वैसा उसको, परंतु वो जब वो देशना लब्धि पूर्वक, देखो उसकी देशना लब्धि तो हुई है परंतु वो तत्व विचार छूट कर व्यापार में चला गया, उस समय उसकी देशना लब्धि नहीं कहलाएगी, उसने देशना भले सुनी है, जब दोबारा वो तत्वों को ख्याल में लेगा, उस पर विचार मंथन चलेगा, तब उस अंतर्मूर्त के लिए वो देशना लब्धि फिर दोबारा है उसकी।
अंतर्मूर्त के लिए बिल्कुल सही बात है, अब हमें भी प्राइवेट लब्धि सब जाता है ना, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं,
ये देशना लब्धि तो अभी भी कभी हुई है।
और ये भी ध्यान रखना कि जिसके कर्म करण लब्धि होती है उसको पांचों लब्धियां एक साथ चालू होती है, ऐसा नहीं कि एक हो गया फिर बाद में जो
यानी 4 हो गए एक साथ और फिर वो करण लब्धि में पहुंचता,
एक अंतर्मूर्त में सभी होता है,
ये पंचलब्धि में बहुत इस पर विस्तार से चर्चा पंचलब्धि पुस्तक में। देखो यहाँ क्या कहते, इससे ग्रंथकार ने देशना लब्धि का संकेत भी कर दिया है, क्योंकि ज्ञानी गुरु के उपदेश बिना पदार्थों का यथार्थ भान नहीं होता, ये ज्ञानी का जो साक्षात उपयोग मिलना ये पहली कंडीशन है, फॉरमोस्ट कंडीशन है, और केवल यही नहीं लिखा है, नियम साहब में भी देखो वहां तो ज्ञानी के वहां तो दर्शन मुनि के उपशम तक पहुंच गए हैं वहां पर, निमित्त की ओर से उपकार रूप ऐसे शब्द बोलने की पद्धति है, वास्तव में वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, जिस समय इस जीव में यथार्थ बोध की बोध प्राप्ति की योग्यता होती है उस समय सामने यथार्थ ज्ञानी गुरु का उपदेश अपने कारण से स्वतः वस्तु स्वभाव नियमानुसार होता ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है निमित्त और निमित्तिक के बारे में, कार्य तो उपादान से ही होता है और उपादान में भी जिस द्रव्य की जिस समय जिस पर्याय की योग्यता उसके अंदर में विद्यमान है उस समय उस पर्याय रूप को परिणमन करेगा ही करेगा। दूसरा नियम है कि पर्याय के समय में उपादान तो है ही है, निमित्त कारण भी विद्यमान होता ही है। तो कहते यहाँ तो वो परिणमने लगा और निमित्त नहीं आवे तो कहते वस्तु स्वभाव ऐसा ही है, उसका नियम ही है कि उस समय वाला जो निमित्त है वो भी नक्की है, क्योंकि निमित्त नाम की किसी अन्य द्रव्य की पर्याय है, वो द्रव्य भी नहीं है उसकी पर्याय है, वो भी स्व समय पर हो रही है। तो कहते यहाँ क्या पढ़ा हमने देखो फिर कि वास्तव में वस्तु स्वरूप तो ऐसा है जिस समय इस जीव में, अब यहाँ बोध की बात चल रही इसलिए उस पर्याय की बात चल रही, यथार्थ बोध प्राप्ति की योग्यता होती है, यानी अभी यथार्थ उसको उपदेश मिलना या वो ग्रहण करने की उसके योग्यता हुई है। बोध यानी ज्ञान, बोध का अर्थ होता है ज्ञान, यानी उसके ज्ञान की पर्याय अपने स्वयं के उपादान कारण से यथार्थ जानने रूप होने वाली है। उस समय सामने यथार्थ ज्ञानी गुरु का उपदेश अपने कारण से स्वतः वस्तु स्वभाव नियमानुसार होता ही है। हमें गुरु नहीं मिले तो हमें आज तक किसी ने नहीं समझाया इसलिए हम नहीं समझे, ये बात वहां नहीं है। हम नहीं समझे थे इतने साल तक, हमें तो लाभ होता यानी हो सकता था, हमने नहीं माना या हम कोई नहीं मिला, क्यों? क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। हमें तो ये निमित्त ऊपर ही आरोप डालते हैं ना, हमको समझाने वाला ही नहीं मिला, हम क्या करते।
तो मेरा ये प्रश्न है यहाँ वस्तु स्वभाव नियमानुसार होता ही है, तो ये कौन सा नियम है ये मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे साहब आप बताए नहीं कोई बात नहीं शेषांत भाई यहाँ जो बताया ना वस्तु स्वभाव नियमानुसार ही होता ही है, ये क्या बताना चाहते हैं? रविवार का
विषय
है। अरे उज्ज्वला ने उत्तर दिया अभी, जब उपादान जागृत होता है तो निमित्त सामने हाजिर होता ही है, यही तो बात बताई अभी उज्ज्वला ने,
वही बोला सुशीला
ने। क्या बोला?
पहले दूसरी बात बताई फिर उपादान की बात।
मैंने सुना नहीं, क्या बोला फिर से बोलो।
उपादान तैयार होगा तो निमित्त
हाँ बराबर बराबर, ये आपने बताया अभी, वही प्रश्न मैंने पूछा, केवल ऐसा नहीं बराबर जो लिखा है समझना चाहिए। हाँ ये वस्तु स्वभाव ही ऐसा है, तो आपने पांच समवाय की बात बताई, पांच समवाय उसमें भी निमित्त है, लेकिन बात तो यहाँ सिर्फ उपादान के निमित्त की है, निमित्त जो है उसका भी उसका वही उपादान है तो हाजिर हो जाओ। चल आगे।
यह ग्रंथ सामान्य ग्रंथ नहीं है।
नहीं ये ऊपर जो लिखा वो समझे नहीं, अज्ञानी को अज्ञानी।
हाँ ये ब्रैकेट की बात नहीं पड़ेगी, अज्ञानी को अज्ञानी ही गुरु मानते हैं।
अच्छा यानी उनको ये कहना अज्ञानी गुरु को अज्ञानी ही गुरु मानते हैं।
हाँ ऐसा ही है।
अच्छा
उसको अज्ञानी को गुरु नहीं कहा इन्होंने, उन्होंने उसको केवल अज्ञानी कहा, और अन्य जीव जो है वो उसको गुरु मानते हैं। यह ग्रंथ सामान्य ग्रंथ नहीं है, किंतु द्रव्यानियोग शास्त्रों का एक प्रकार से राजा है। यह ग्रंथकार ने ग्रंथराज इस पद से स्वयं सूचित किया है। यह भी वो निमित्त की बात पढ़ी ना, तो हम 2004 से अमेरिका जाने लगे, उसके पहले एक बहन का ईमेल आया था हमको 2003 में, राले में रहती है वो नलिनी कुछ नाम नलिनी बहन, तो आपको आना है वगैरह वगैरह उन्होंने लिखा था बहुत सारा कि हम चाहते हैं। उनके यहाँ से कोई बहन भी यहाँ आके मिल के गई थी, उन्होंने हमारा अमेरिका आने का बिल्कुल विचार नहीं है, क्योंकि हमारी इनकी बहन वहां से तो 1970 से वहां गई है और बहुत बार बोल चुकी थी आओ आओ। हमने कभी अभी सुन रही ना फोन पर तो हमने तो ना 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 ऐसा ही कहा था, हमने उनको भी बता दिया कि हम तो आना नहीं चाहते। तो उन्होंने फिर से जवाब दिया कि हमारी उपादान की तैयारी होगी तो आपको आना ही पड़ेगा और ऐसा ही हुआ, अनेकों बार वहां गए हम। हर बार राले में तो हमारे 8-10 दिन का प्रोग्राम होता ही था। ये मंगलाचरण देवगुरु के संबंध में 2 नंबर का श्लोक, किसी के यहाँ सेकंड लाइन अगर सुधारा नहीं है तो सुधारना। सेकंड लाइन में लिखा है धर्माचार्या ध्याया होगा ना, तो ध्या चाहिए अध्यापक, अध्यापक वाला अध्यापक। ध्य और य अलग अलग लिखा है ना,
या नहीं चाहिए,
ध्या एक शब्द चाहिए, दो शब्द लिखे, दो अक्षर लिखे ध्य और या, उसके बदले ध्या एक ही अक्षर चाहिए। धर्माचार्य लिखा है ना सुशीला, धर्माचार्य उसके आगे क्या लिखा है, ध्य और या अलग अलग है, ध्या अध्यापक यानी अध्यापक का वो ध्यान, अध्यापक ये शब्द। अभी हम पढ़ेंगे फिर से दोबारा। शेषानपि तीर्थकरा अनंत सिद्धानहं नमामि समं धर्माचार्याध्यापक साधु विशिष्टान् मुनीश्वरान् वंदे। साथ ही साथ पहले वीर भगवान को यानी महावीर को नमस्कार किया। हमें प्रवचन सार में भी लिखा है ना, ऐसा ही लिखा है शेष शेष सर्वतीर। साथ ही साथ 23 तीर्थंकरों को और अनंत सिद्धों को भी मैं नमस्कार करता हूँ, तथा धर्माचार्य धर्माध्यापक उसी को धर्मोपाध्याय का, धर्म उपाध्याय ये धर्म का अध्यापक पढ़ाने वाले, धर्म साधु इन 3 प्रकार के मुनीश्वरों को भी मैं नमस्कार करता हूँ, यानी आचार्य उपाध्याय और साधु। अब 3 नंबर का श्लोक है, जिया जैनम शासनम अनादि निधनम सुवंद्यम अनवद्यम यदपि चकुमतारातीन दयम भूमध्वजोपमं दहति। जियात यानी जिए, जियात जियात जैनम शासनम, जियात का क्या अर्थ है, जिया जीवित रहे, हाँ जीवित रहे, जिया है ना जीवित रहे। तो जिया जैन ये हमने पढ़ा ना अभी, तो अनादि निधन शब्द आया है। सुवंद्यम यानी भले प्रकार वंदनीय, अनवद्यम निर्दोष, जैनागम जैनम शासनम जीवित रहे यानी जिया, कि जो खोटी बुद्धि वाले शत्रुओं को यानी अन्य मतियों को कुमत आरा तीन दयम, अदयम यानी अग्नि की तरह निर्दयता पूर्वक जलाता है, धूमध्वजोपमं दहति, अर्थात उनके माने हुए खोटे तत्व का बुरी तरह खंडन करता है, यानी वो किसी को जाके किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, उनके जो मत है मिथ्या मान्यताएं है उन मान्यताओं का खंडन किया जाता है। और ये जैन आगम कैसा है, तो अनादि निधन है, ये अभी अभी नया प्रस्थापित नहीं हुआ है। लोग मानते हैं महावीर भगवान ने वो जैन वहाँ वो शुरुआत किया, उनको मालूम नहीं। तो हम कहेंगे नहीं, हमारे पहले वो आदिनाथ भगवान भी हुए, तो क्या उन्होंने संस्थापक है वो जैन धर्म के? तो जैन धर्म का कोई संस्थापक नहीं हो सकता, वो बताने वाले भले अलग अलग जीव हो गए। तो ये तीर्थंकर कब से होते आए? तो कहते अनादि से। ये तो चलता ही आ रहा है, मोक्ष मार्ग भी अनादि है। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले जो तीर्थंकर भगवान है वो भी अनादि से विद्यमान है। कभी तीर्थंकर भगवान न हो ये बात कभी हो नहीं सकती। आप कहेंगे हमें तो कोई नहीं मिला इस भाव में, तो यहाँ पर नहीं है, परंतु अभी भी वर्तमान में विदेह क्षेत्र में तो विराजमान है, वहां पर साक्षात है। तो ऐसा कभी एक समय भी ऐसा नहीं है कि कोई तीर्थंकर न हो, ये हो ही नहीं सकती बात।
आपने बताया था ना पहला चौथा पांच,
हाँ ये कौन से गुणस्थान हमेशा होते हैं?
तेरहवा गुणस्थान, इसमें कोई ना कोई जीव तो हमेशा होगा ही होगा।
आपने सुना शशांक क्या कहते हैं? ये ऐसे है, आपको गुणस्थानों का अभ्यास नहीं कोई बात नहीं, पर 14 गुणस्थान होते हैं इतना सामान्य से तो आपने सुना। पहला गुणस्थान इसका नाम मालूम है? मिथ्यात्व। यानी जब मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, समय दर्शन हुआ तो लोअर में स्ट्रोक है उसकी चौथा गुणस्थान, फिर वो श्रावक के पांचवा गुणस्थान है और अंतरंग स्थिरता है। मुनियों के सामान्य से छठा सातवा गुणस्थान होता है। जब श्रेणी चढ़ने का कार्य होता है यानी अंतरंग में स्थिर हो जाते हैं तो उसको कहेंगे श्रेणी चढ़ी। आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां ये है उपशम श्रेणी के गुणस्थान। ग्यारहवें तक जाके फिर लौट कर 10, 9, 8, 7, 6 तक क्रमशः नीचे आते हैं। क्षपक श्रेणी तो उसी भाव में मुंह जाने वाले चढ़ते हैं, तो 8, 9, 10, 12 फिर 13वां फिर 14 होकर मोक्ष चले जाते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे गुणस्थान है जिसमें कोई ना कोई जीव हमेशा ही पाए जाएंगे? ऐसे एक समय भी नहीं है कि उस गुणस्थान में कोई जीव ही नहीं हो। तो मिथ्यात् गुणस्थान में कोई भी न हो ऐसा कब बनेगा? अनंत काल के बाद बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। मिथ्यात् गुणस्थान में हमेशा ही कोई ना कोई होगे ही होगे, अनंत जीव होगे उसमें।
पर आप कहते हैं कि हर 6 महीने 8 समय में 6-7 जीव मोक्ष जाएंगे, तो फिर
हाँ।
सब जाएंगे ना?
हाँ, तो लोगों को यही डर लगता है यहाँ कौन रहेगा। तो कहते 3 काल में भी जाते रहेंगे, इसी क्रम से जाएंगे भी, तो भी एक निगोद शरीर में जितने अनंत जीव है उसका अनंतवा भाग भी जीव 3 काल में सिद्ध नहीं बन सकता। यानी 3 काल की जो सिद्ध राशि है उससे भी अनंत गुणे जीव संख्या में एक निगोद शरीर में रहते हैं। और ऐसे निगोद शरीर तो 5 बार असंख्यात लोक लिखकर आपस में गुणा करो इतने हैं। अभी एक शरीर के भी कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। सब भव्य भी रहेंगे क्योंकि हमेशा ही संसार जो राशि है उसमें अभय से भव्य अनंत गुणे ही रहेंगे। इतने अनंत अनंत सिद्ध हो गए ना भव्यों में से, तो भव्य राशि फूटेगी तो कहते नहीं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है इन राशियों का। और ये सब बातें किसने बताई? तो जानकर बताने वाले तो केवल ज्ञानी है, अनंतों का ज्ञान तो उन्हीं के है। तो उन्हें वो तो अनादि से अनंत काल तक की सभी चीजें जानते हैं, सभी पर्याय को जानते हैं। तो ये कहते ये जैन शासन कैसा है? अनादि निधन। ऊपर अनादि निधन किसको लिए कहा था? वस्तु जीवादि पदार्थों को अनादि निधन कहा था, स्वतः सिद्ध कहा था। और यहाँ किसको कह रहे हैं? जैन शासन को, जैन आगम को, यानी जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को। यानी वो उपदेश भी नष्ट हो जाएगा, हमें डर क्या है? अभी क्या हुआ, अभी इतना सब उलोक हो गया है। पहले तो 12 अंगों का ज्ञान था, 14 पूर्वों का था, अभी कुछ उसका बहुत छोटा अंश रह गया, अभी ये भी नष्ट हो जाएगा। अरे रे इसका क्या होगा? जिन धर्म का किसी को ये चिंता नहीं कि मेरा क्या होगा। जितना भी अभी उपदेश हमें उपलब्ध है अध्यात्म का, हम अपना अनुभव करके पर्याप्त है। हाँ, जो कुछ नष्ट हो गया है वो होता तो बहुत ही अच्छी बात थी, मत जो अभी उपलब्ध है उसका भी कहाँ सब लोग अभ्यास कर रहे हैं क्यों भाई? ये हमारे थोड़े गिने चुने आते अभी धवला जयवला महाधवला अपने चल रहे हैं ना, उसमें तो बहुत छोटा अंश रह गया है। उसमें भी काल में कितने, ये तो जानने वाले जीव भी जानकर अभी तो उनके तो हो गए, वो तो स्वर्ग पधारे हैं, और बाद में उसके क्यूरियोसिटी उसकी जिज्ञासा उसके जानने वाले कम रह गए, उसमें भी काल के प्रवाह में कितने ग्रंथ नष्ट हो चुके। अभी जो हम महाबंध की छठी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका ताड़पत्री अंश ही नष्ट हो चुका है, जो बचा है उसको छापा है उन्होंने। अभी हम क्या कर रहे हैं तो हमारे गए कितने 15-16 लेक्चर तो ऐसे चल रहे हैं कि जो नष्ट हुआ जो अंश है उसको हम रिवाइव करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह ये सब हम बैठते हैं ना, सब आपस में चर्चा करके उसको लिख रहे हैं। ये आते हैं हमारे, प्रेरणा बेन आते हैं, लक्ष्मी बेन आते हैं, नितिन भाई आ गए तो ये जो जैन शासन कैसा है तो अनादि निधन है, भले प्रकार वंदनीय है। देखो देव गुरु और शास्त्र तीनों को वंदनीय पूजनीय अष्टद्रव्य से पूजनीय कहते हैं। ये वंदनीय नहीं, वो धर्म बुद्धि से होंगे। वंदना तो हम हमारे नहीं, नमस्कार जो करना है वो हमारे माँ बाप का भी करते हैं, वहां ऐसा नहीं पूछते वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, ख्याल में है ना। हमारे से जो बुजुर्ग है कोई राजा मिथ्या दृष्टि भी होगा तो उसको भी नमस्कार करेंगे, वो लोक व्यवहार है, उसमें वो मिथ्यात्व का दोष नहीं आता है ना। यहाँ तो ये देव गुरु और शास्त्र जो है यहाँ धर्म बुद्धि है और उससे वो हम उसको वंदनीय कह रहे हैं। तो अनादि निधन है, भले प्रकार वंदनीय, निर्दोष है, ये दोष रहित है। पहले कुछ और कहा है, बाद में कुछ ऐसे पूर्वापर विरोध नहीं है इसमें, और कोई मिथ्या मान्यताओं का पोषण नहीं, इसलिए इसको निर्दोष कहा, इसको प्रमाण कहेंगे, क्योंकि वो तो भगवान की वाणी है, उन्होंने सभी चीजें जानकर बताई है, इसलिए वो प्रमाण है, निर्दोष है। ऐसा जैन आगम जीवित रहे, अभी अनादि निधन है तो जीवित रहने ही वाला है, तो इसको जीवित रहे कहेंगे, हमारी उसमें अनुमोदना हो रही है। क्यों जीवित रहे? जो खोटी बुद्धि वाले शत्रुओं को अग्नि की तरह निर्दयता पूर्वक जलाता है, शत्रुओं को जलाता है नहीं, वो उनकी मान्यताओं का निषेध करता है, खंडन कर देता है। भावार्थ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट यानी उपदेश दिया हुआ आगम परंपरा दृष्टि से आदि और अंत रहित है। परंपरा दृष्टि ने प्रवाह की अपेक्षा से उसके कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, हमेशा ही वो चलता रहेगा, आदि अंत, अनादि अनंत जिसको कहें, अनादि निधन, तो आदि से भी रहित और अंत से भी रहित है। ये एक नंबर का पॉइंट, मैं पूछूंगी कितने पॉइंट आपने सीखे। ये आगम का वर्णन चल रहा है, एक तो आदि अंत रहित है, दूसरी बात सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा प्रतिपादित होने से, यानी वो उसके लिए रीजनिंग बता रहे हैं। ये बताया किसने है? सर्वज्ञ और वीतराग। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? कुछ जानना बाकी नहीं, हम तो कहेंगे हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया तो हम मानेंगे, वैज्ञानिकों ने, तो वैज्ञानिक जो आज के हैं वो कहेंगे हम आज के वैज्ञानिक, तो आपको वैज्ञानिकों का ही मानना है, तो आज के वैज्ञानिकों ने बताया वो मानना है कि 100 साल पहले के वैज्ञानिकों ने बताया वो मानना है, कौन सा सच है आज का कि 100 साल पहले? 100 साल पहले का नहीं, हम वैज्ञानिकों में हम कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो आज के वैज्ञानिक तो पहले का गलत कर साबित करके नया प्रूव कर रहे हैं। मेरी अपनी एक परिभाषा है वैज्ञानिकों की, जिसकी खोज कभी पूरी नहीं होती उसको हम वैज्ञानिक कहें, और सर्वज्ञ किसको कहना है? जिसको खोजने के लिए कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ जान लिया, तो किसका कथन सही होगा ये हमें निर्णय करना है। और दूसरी बात क्या, वो वीतरागी है, राग द्वेष से रहित है, तो झूठ क्यों बोलेंगे? किसी का भला करना है, किसी को बुरा करना है, किसी को अपराध किया उसने उसको दंड देना है, सजा देना है, ऐसी थोड़ी बात है। तो कहते सर्वज्ञ वितराग देव द्वारा प्रतिपादित यानी कथित होने से, ये रीजनिंग बताया क्या है उसमें, पूर्वापर विरोध न आने से, पहले कुछ अर्ण्य बताया बाद में कुछ, ऐसा विरोध उसमें नहीं है। आप कहेंगे अन्य मति भी ऐसा ही कहते हैं, नहीं कहीं कहीं तो हिंसा का पोषण करते हैं और कहीं कहीं हिंसा का निषेध करते हैं, कहीं कहीं ब्रह्मचर्य से वो स्वर्ग मिलेगा कहेंगे और वो सत्य अनुसार को कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जाओ फिर नीचे चले जाओ, स्वर्ग का दरवाजा बंद है, भूतल पर चले जाओ और पुत्र पैदा करो और बाद में यहां आ जाओ, यानी कहीं ना कहीं ऐसी उनकी कोलम पट्टी खुल जाती है। तो कहते यहाँ जिनेन्द्र भगवान के आगम में पूर्वापर विरोध नहीं है। तीसरी बात क्या है, प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि प्रमाणों से खंडित न होने से, उनका जो वचन है जो प्रत्यक्ष हम चीजें देखते हैं उसके द्वारा खंडित नहीं होता, और परोक्ष प्रमाण जो अनुमान है तर्क है आदि से भी वो खंडित नहीं होता, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। और शंकादि दोषों का स्थान न होने से, उसमें कोई शंका संशय आदि हो ही नहीं सकता है, उसको निर्दोष कहा। ऊपर लिखा ना अनादि निधन निर्दोष कहा था। तत्व के प्रतिपादन पूर्वक, प्रतिपादन यानी कथन, यानी तत्व ज्ञान को बताकर उसके पूर्व शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय बतलाने के कारण, ये जिनेन्द्र भगवान के आगम में क्या केवल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तत्व ज्ञान वस्तु का स्वरूप तो बताया है, उसके द्वारा आत्मा का अनुभव कैसे करना ये सब इसमें बताया, उसको कहेंगे आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय। आत्म तत्व तो हम स्वयं है परंतु हमने कभी सोचा ही नहीं हम कौन है, तो उसको सही रूप से कैसे हम उसका अनुभव कर सकते, इसका उपाय उसमें बतलाया है। उसके कारण सब जीवों द्वारा विशेषतया ज्ञानियों के द्वारा भले प्रकार वंदनीय है, क्योंकि ज्ञानियों को उसकी वैल्यू ज्यादा मालूम है। अज्ञानी भी देखा देखी या परंपरा हमारे घर में सब नमस्कार करते देव को भी गुरु को भी शास्त्र को भी, इसलिए हम भी करेंगे वो बात नहीं है। तो कहते ज्ञानियों द्वारा भले प्रकार वंदनीय है, और विपरीत वस्तु स्वरूप का यानी जो खोटा वस्तु स्वरूप जो है ही नहीं है, जो विपरीत मान्यता है, उस खोटे मार्ग का खंडन करने वाला है। ये भावार्थ को फिर हम कल पढ़ेंगे, और ये जो अभी हमने जो जो वो भगवान का आगम कैसा है उसके एक एक पॉइंट्स आपको याद करके आना है, अभी रोज होमवर्क चलेगा, हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जानी के ज्ञान से सूझे वो कालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हो।